नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के एकता नगर में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि एक भारत के प्रतीक के रूप में भव्य एकता परेड हर साल 31 अक्टूबर को एकता नगर में आयोजित की जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले प्रचार अभियान तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता राज्य भर में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसिया रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे और आईसीसी महिला 1 दिवसीय विश्व कप में भारत दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला खेल रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की गुजरात दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री आज केवड़िया के एकता नगर में 1,140 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा तथा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
आज उद्घाटन की जा रही परियोजना में राजपिपा में बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ, गरुड़ेश्वर में आतिथ्य जिला प्रोजेक्ट के पहले चरण का लोकार्पण, वामन वृक्ष वाटिका, सतपुड़ा सुरक्षा दीवाल, ई बस चार्जिंग डेपो और नर्मदा घाट विस्तार जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 367 करोड़ रूपये के खर्च से तैयार होने वाले भारतीय शाही राज्य संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, खेल परिसर, वर्षा वन परियोजना, शिल्पानेश्वर घाट के पास जेटी विकास और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रेवलेटर्स सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस वर्ष की परेड में 9 राज्यों की भागीदारी देखने को मिलेगी। परेड में राज्यों की सिद्धियों को दर्शाती हुई 10 झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। अपर्णा खून।
गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कल गुजरात के केवड़िया में एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतीक के रूप में एक शानदार एकता परेड का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड का उद्घाटन करेंगे। हर साल 31 अक्टूबर को एकता नगर में यह परेड आयोजित की जाएगी। पटना से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि देश में बड़े स्तर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियां और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ATMM प्लस में भाग लेने के लिए आज मलेशिया की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। ये सम्मेलन शनिवार को होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा है कि इसका उद्देश्य आसियां के सदस्य देशों और भारत के बीच रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग मजबूत करना और एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि श्री राजनाथ सिंह आसियां के सदस्य और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों तथा मलेशिया के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने आज कहा है कि भारत साइप्रस की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा समर्थन करता है। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस के साथ बैठक में सीमा पार आतंकवाद के विरूद्व लड़ाई में साइप्रस में निरंतर समर्थन की सराहना की है। उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमलों का कड़ा विरोध करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए साइप्रस सरकार को धन्यवाद दिया। डॉ जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु अतिपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता का निरंतर समर्थन करने के लिए भी साइप्रस का धन्यवाद किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड अरुणाचल प्रदेश सरकार के ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय अरुणाचल प्रदेश रिवर्स बायर सेलर मीट 2025 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं देते हुए अरुणाचल प्रदेश को ऑर्गेनिक, प्राकृतिक और मूल्य आधारित उत्पाद के नए हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ पार्टनरशिप के लिए सराहना की। श्री खांडू ने अरुणाचल प्रदेश को एक प्रोड्यूसर राज्य के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी में बदलने के सरकार के विजन पर जोर दिया। उन्होंने एक्सपोर्ट करने लायक प्रोडक्ट्स की पहचान करने, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और इंटरनेशनल ब्रांडिंग सपोर्ट देने के लिए अपेरा जैसे नेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर राज्य द्वारा की गई कई पहलों का जिक्र भी किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में जमानत पर हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेता लोगों को गुमराह करने के लिए चुनाव में झूठे वायदे कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को नक्सलवाद, अपहरण और जंगल राज से मुक्त कराया है। उन्होंने महागठबंधन के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय के मटिहानी में कहा कि उनकी सरकार ने सही अर्थ में महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में अपराध का बोलबाला था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार।
युवा कार्यक्रम, खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत एक समय से जहाज निर्माण और समुद्री क्षमताओं में विश्व में अग्रणी था। भारत समुद्री सप्ताह 2025 में समुद्री मानव पूंजी सत्र में मुख्य भाषण देते हुए डॉ. मांडविया ने बताया कि वास्को डी गामा के भारत के आने से बहुत पहले ही भारतीय व्यापारियों ने विश्वभर में व्यापार मार्ग स्थापित कर लिए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोकतंत्र के तीनों अंगों विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर आयोजित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन पर लगे मौजूदा 57% टैरिफ को घटाकर 47% कर दिया गया है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ हुई बैठक के बाद इसकी घोषणा की। श्री ट्रंप ने कहा है कि चीन अब तुरंत अमेरिका से सोयाबीन खरीदना शुरू कर देगा। आईसीसी महिला विश्व कप में आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। यह मैच नवी मुंबई में दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाजी करते हुए 22.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान के साथ 151 रन बना चुकी है। सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देशभर के नागरिकों को लाभ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधारों से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।
नए जीएसटी सुधारों ने छत्तीसगढ़ के हथकरघा और सीमेंट उद्योग को बड़ी राहत प्रदान की है। हथकरघा क्षेत्र, जो राज्य में लगभग 1.5 लाख बुनकरों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है, उस क्षेत्र पर करों को घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती ने हाथ से बुनी साड़ियों और टसर रेशमी कपड़ों को अधिक किफायती और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बना दिया है, जिससे निर्यात बाजारों में भारतीय हथकरघा उत्पादों को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला है। वहीं सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने से सीमेंट किफायती हो गया है, निर्माण लागत कम हुई है, आवास की मांग बढ़ी है और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा,
जीएसटी कम होने से पहले 28% की दर लगती थी, अभी 18% की दर हो गई, तो उससे थोड़ा सा मार्केट में एक उठाव आएगा। कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे तो उसमें हमारे स्टील के खपत होंगे, तो कहीं न कहीं ये जीएसटी 2.0 जो है वो हम सभी के लिए काफी लाभकारी है।
नए जीएसटी सुधार समावेशी विकास को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ को सतत सामाजिक आर्थिक विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। रिशु और शिवांग के साथ अनुपम मिश्रा।
उपराष्ट्रपति सीतवी राधाकृष्णन ने आज स्वतंत्रता सेनानी पसुम्पोम मथुरामलिंगर को उनकी 118वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि स्वाधीनता आंदोलन में उनका योगदान उल्लेखनीय था और आने वाले समय में उन्हें याद रखा जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने आम लोगों के लिए वेदों का ज्ञान जनसामान्य की भाषा में उपलब्ध कराने की अविस्मरणीय भूमिका निभाई थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।